महाबंध
पुस्तक
छठवी लेक्चर नंबर 13 यह श्री भगवान भूत बलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल, उसमें छठवी पुस्तक में चौथा प्रदेश बंद अधिकार है। उसको देखते हुए अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 76 पर, 76। यहाँ नाना जीवन की अपेक्षा अंतरानुगम प्रारंभ हुआ था और ओर में हमने देख लिया था, फिर भी दोबारा देखकर फिर आगे बढ़ेंगे कि अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। ओवर आदेश, वो उसे सात कर्मों के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पद का अंतरकाल नहीं है। अवक्तव्य पद का अंतर, जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक का प्रमाण है, ये उपशम श्रेणी का अंतर है। आयु कर्म के चार पदों का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि आयु बांधने वाले भी हमेशा ही होंगे और उसके चारों ही पद भी हमेशा ही होंगे। अब ये ओग के समान प्ररूपणा कहाँ घटित होती है, तो काय योगी, औदारिक काय योगी, अचक्षु दर्शनी, भव्य और आहारक में। और इसी प्रकार ये सात कर्मों के अवक्तव्य बिना बाकी घटित होता है, तो सामान्य तिर्यंश, एकेंद्रिय, पांच स्थावर का एक, औदारिक मिश्र काय योगी, नपुसक वेदी, क्रोधादि चार कषाय वाले, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंग्य तीन लेशा वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंग्य और अनाहत। लोक कषाय में मौनी का अवक्तव्य पर होता है। अभी हम नारकियों में पढ़ेंगे, ये तो हमने कल विशेष पहले तो पढ़ा था सर, मार्गणाम में देखेंगे अभी अंतर। सात कर्मों के भुजगार और अल्पतर पद का अंतर काल नहीं है, क्योंकि हमने वो हमेशा देखे थे ना, काल में भी हमेशा देखे थे, तो अंतर में उसको अंतर नहीं है कहेंगे। अवस्थित पद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण है। एक जीव की अपेक्षा कितना अंतर देखा था नारकियों में अवस्थित का, मैंने जो नरक की उसकी भव स्थिति है उसमें कुछ कम। शुरुआत में एक बार अवस्थित किया जब गोलमान योग शुरू हुआ, और अंत में एक बार किया। यहाँ तो नाना जीवन की अपेक्षा बात चल रही। आयु कर्म के भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य पद का अंतर काल प्रकृति बंध के अंतर के समान है, यानी आयु कर्म नहीं बंधे ऐसे कितने लंबे काल तक हो सकता है। 24 मुहूर्त कुछ हमने देखी। अवस्थित पद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है। जब मैं सात कर्मों का देखा वैसे आयु का भी। इसी प्रकार असंख्यात राशि और संख्यात राशियों में जानना चाहिए, यानी भुजगार अल्पतर हमेशा होगा, अवस्थित का वो अंतर एक समय से जगत श्रेणी के असंख्यात भाग होगा, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, बादर अग्नि का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त, और बादर प्रत्येक वनस्पति का एक पर्याप्त जीवों में पंचेन्द्रिय तिरियंच अपर्याप्त को उनके समान भंग है। हमेशा लिखते परंतु उसको अलग से बताते नहीं है, यह एक फुल स्टॉप देना। नाना जी उनकी अपेक्षा देख रहे हैं ना, तो वो के समान नहीं लिखा, यानी उसमें उसमें भुजगान अल्पतर हमेशा ही हो गए।
अवस्थित का खाली
आयु का क्या वही होगा। काल में हमने क्या देखा था जरा देख लो, बादल पृथ्वी का एक कोने काल, वहाँ भी ऐसे ही लिखा था।
वहाँ पे संतुष्टि इस्तेमाल करते हैं, अपर्याप्त के समान बन बचा है वहाँ पे वायु का विभक्त होगा कि नहीं होगा, अंतर कितना होगा?
नहीं होगा, क्योंकि छोटी राशि है ना, बहुत बड़ी संख्या नहीं, असंख्या नहीं है, छोटी असंख्या है। पर भी काल में भी ऐसे बताया था 75 पेज पर 139 नंबर का पॉइंट। काल में तो हमने घटित कर लिया था एक समय से अवस्थित में, एक समय से आवली का संख्या प्रभाव, परंतु उसमें अंतर कितना पड़ेगा? उन्होंने लिखा तो नहीं है कुछ,
एक दिन का
59 पंचेन्द्रिय तिरियंच त्रिक में एक जीव की अपेक्षा वो मार्गणा का काल अंतर्मूर्त का था। एक जीव की अपेक्षा इसमें मार्गणा निरंतर है, मार्गणा का अंतर नहीं कह सकते हम, निरंतर मार्गणा है, वही नारकी के समान ही होगा ऐसा लगता है। श्रेणी का असंख्या प्रभाव अंतर्मूर्त नाना जी उनके भी भुजगार अल्पतर का तो होता ही रहेगा, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त
हाँ,
आयु के बारे में क्या होगा? ये अनंतरिक ही रहता है, यानी हम अपनी ओर से कुछ कहना है जानते हैं, परंतु वक्तव्य के लिए जो प्रकृति बंध का अंतर है वही घटित होगा। पहले तो उन्होंने बता दिया है कि जैसे असंख्यात राशि है उसमें ऐसा ही चाहिए, फिर मादर पर्याप्त तो की अलग बात क्यों की? ऊंचे तीरे चपर्याप्त तो के समान बंगल चलो बढ़ते हैं। काल में फिर भी अंदाजा लगा सकते हैं अंतर में। आगे उत्तर प्रकृति में कभी आएगी बात तो वैकृत मिश्र की बात पढ़ेंगे। ये तो अभी सांतर मार्गण है। वैकृत मिश्र का योगी जीवों में सात कर्मों के विजगार पद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर बारह मुहूर्त है। ये वैकृत मिश्र का योग का ही अंतर नाना जीवन की अपेक्षा और यह मात्र भुजगार पद ही होगा। इस अंतर कथन से शेष मार्गणाओं में संगी मार्गणा तक प्रकृति बंध के अंतर के समान अंतरकाल जानना चाहिए। आपको प्रकृति बंध का अंतर देखना है तो मूल प्रकृति बंध का अंतर हम देख सकते हैं। एक नंबर की पुस्तक लेना, उसमें पंचेंद्रिय तीर्यंचों में पर्याप्तकों में शायद उससे कुछ अंदाजा बांध सकते हैं। मूल प्रकृति की बात है अपनी तो यहाँ जीव की अपेक्षा नहीं, नाना जीवन के नाना जीवन की अपेक्षा अंतरानुगम आदेश 288। अच्छा बाकी के बाद में देखते आयु का देख लेते पहले। पंचेंद्रिय तीरंज अपर्याप्त को में तीरंज आयु के जघन्य अंतर जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से अंतर मूल वो तो ठीक है मनुष्य आयु का वो। शेष प्रकृति में अंतर नहीं है यानी वो शेष प्रकृतियों में अंतर नहीं है। भुजा हमने देखा ना भुजगार का अल्पतर का तो अंतर नहीं है, वो तो हमने देख लिया था। अवस्थित का अवस्थित का अंतर होगा वही श्रेणी का असंख्या का वही कहना पड़ेगा। वैकृत मिश्र का तो आसान है समझना क्योंकि उसमें तो ओग से जो अंतर है सात कर्मों का उतना तो पड़ेगा। यानी सात कर्मों के भुजगार में अंतर नहीं, ऐसे जो हमने नारकियों में देखा था ना भुजगार और अल्पतर का अंतर नहीं होगा और अवस्थित का जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग होगा। इसलिए इसको अलग क्यों लिया बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त को, क्योंकि अपर्याप्त को में अवस्थित का भी अंतर नहीं होगा वो बहुत बड़ी संख्या है इसलिए इसको लिया। यहाँ पर कहाँ से मैं कह रही हूँ पांच स्थावर का एक पहले लिए थे उन्होंने बादर पृथ्वी का एक इतना हम ले लेंगे तो उसमें अंतर नहीं अवस्थित का भी अंतर नहीं कहेंगे और यहाँ अवस्थित का अंतर होगा जगत श्रेणी का संख्या को।
तो ये तीरंज और पर्याप्त का अवचिन्न
हाँ, क्योंकि वो मार्गणा तो निरंतर है अवस्थित के लिए, भुजगार अल्पतर का अंतर नहीं है। यानी जो बादर वगैरह सभी बताए ना, बादर पर्याप्त, अग्नि का एक पर्याप्त, भुजगार अल्पतर का अंतर नहीं है, अवस्थित का अंतर होगा जगत श्रेणी का असंख्यात अभाव, यानी एक समय से लेकर, क्योंकि हम उत्कृष्ट अंतर की चर्चा कर रहे हैं ना। वक्तव्य तो सात कर्मों में होगा नहीं, अवक्तव्य होगा नहीं, श्रेणी नहीं है ना। आयु में जब अंतर देखना है, अभी हमने देखा था ना तीरियंच आयु के लिए
एक समय का अंतर होती है,
पंचेंद्रिय तीरियंच पर्याप्त को हमने देखा था ना,
एक समय का अंतर होता है,
और बादर पर्याप्त में वही देखा था। इसी प्रकार बादर पर्याप्त को में वगैरह भी केवल तेज काय में आयु का 24 मुहूर्त तो अंतर है, क्योंकि संख्या कम है। एक समय से अंतर मुहूर्त आयु में होगा, अग्नि कायिक में 24 मुहूर्त का मैक्सिमम अंतर पड़ सकता है, प्रकृति बंध का अंतर नाना योग की अपेक्षा। अब आगे पढ़ेंगे हम, विशेषांक पढ़ते हैं। नारकियों में सात कर्मों का निरंतर बंध होता रहता है, किन्हीं के भुजगार रूप और किन्हीं के अल्पतर रूप होता है, इसलिए यहाँ सात कर्मों के इन पदों के अंतरकाल का निषेध किया है। अब रहा यहाँ इन कर्मों का अवस्थित पद, सो वह निरंतर नहीं होता, कभी एक समय के अंतर से भी हो जाता है, और कभी योग स्थानों के क्रम से जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण काल के अंतर से होता है, इसलिए इसका जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा है। आयु कर्म के अवस्थित पद का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए, मात्र इसके भुजगार अल्पतर और अवक्तव्य पद का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर जैसा प्रकृति बंध में अंतर कहा है उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आयु कर्म का बंध होता है तभी ये पद होते हैं। हमने नारकियों में प्रकृति बंध का देखा था ना, ऊपर से नीचे के नरक तक अलग अलग, और जनरल बात हमने अंतर बता, अभी हमने 288 देखा था ना, वहीं पर देख लेते नारकियों में, आपको बता दे। नारकियों में मनुष्य तीरियंचय के बंधकों का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट 24 में, फिर वो 24-48 पक्ष मास 2 मास वगैरह वगैरह बताए, और बाकी के प्रकृति बंध का अंतर नहीं है। यानी जैसे वहां जन्म का भी अंतर 24 मुहूर्त का है, वैसे आयु बंध का भी 24 मुहूर्त है। विशेषात पढ़ रहे थे, यहाँ अन्य जितनी असंख्यात और संख्यात संख्या वाली मार्गणाएं हैं, उनमें उक्त विशेषताओं के साथ अंतर प्ररूपणा करनी जाननी चाहिए। बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त आदि में पंचेन्द्रिय तिरंज अपर्याप्तकों के समान भंग बन जाने से इसकी अंतर प्ररूपणा उसके समान जानने की सूचना की है। इन्हें आयु में अंतर होगा ना नारकियों से, उसमें वैक्रिक मिश्र काय नारकी में 24 मूर्त देखा। और जैसे नारकियों के लिए भी योग स्थान टोटल कितने हैं तो जगत श्रेणी के असंख्या थे, तो बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त में भी उतने ही होंगे। संख्या तो हमें दिखोगी परंतु जगत श्रेणी के असंख्या त्यौहार उनमें भी होंगे। वैक्रिक मिश्र का योग का जघन्य अंतर एक समय, यानी जघन्य अंतर कैसे घटित करना, कोई जीव नरक में या देव में जन्मा, फिर एक समय के अंतर से दूसरा कोई, यानी उसने वैक्रिक मिश्र पार करके चला गया, बाद में एक समय के अंतर से कोई आया। समझ में आती बात? प्रवेश की अपेक्षा नहीं, उसमें किसी ने जन्म लिया नरक में या देव में तो वो वैक्रिक मिश्र का योगी होगा। अंतर कब होगा? जब वो वैक्रिक मिश्र से वैक्रिक का योग में चला जाएगा। एक समय के लिए कोई भी जीव वैक्रिक मिश्र में नहीं था, फिर लौट के कोई उसमें जन्म लेगा, तो एक समय का अंतर होगा। अधिक से अधिक अंतर कितना हो सकता है? 12 बार। उत्कृष्ट अंतर 12 मूर्त है, इसलिए इसमें 7 कर्मों के भुजगार पद का जघन्य अंतर, यहाँ केवल भुजगार लिया क्योंकि यहाँ भुजगार ही होता है, एकांत बुद्धि के योग होते हैं। जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 12 मूर्त कहा है। इसी प्रकार अपनी अपनी विशेषताओं को जानकर, विशेषता को जानकर अंतर काल अन्य सब मार्गणाओं में जानना चाहिए, यानी जो सांतर मार्गण है उसका जो अंतर होगा वो वहां समझना चाहिए। इस प्रकार अंतरकाल समाप्त हुआ। भावानुगम, भावानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओव और आदेश। ओव से 8 कर्मों के भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य पद के बंधक जीवों का कौन सा भाव है? जब बंधक कह रहे हैं तो उसमें कोई भी पद क्यों न हो, तो कहते औदयिक भाव है। भावानुगम 12 अंतर में 12 11 था, भुजगार नंबर 12 है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ। इसमें 13 ही थे ना नियोग, अल्पभूतव आएगा अभी। ये भुजगार का नंबर 13 है, अल्पभूतव अनुगम। अनुगम का अर्थ क्या होता है? हाँ शून्य, अधिकार नहीं, यथार्थ बोध, यथार्थ बोध। ये ज्ञान के विशेष प्रकार है ना, ज्ञान करने के लिए जो तत्वार सूत्र में 2 सूत्र है, सत्संख्या क्षेत्र वगैरह, उसमें भी अल्प बहुत्व अनुगम। अल्प बहुत्व 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से 7 कर्मों के अवक्तव्य पद के बंधक जीव सबसे स्तोक है। हमने देखा वो संख्या है जो उपशम श्रेणी से उतरने वाले हैं। इनसे अवस्थित पद के बंधक जीव अनंत गुणे हैं। ये भुजगार वालों से असंख्यात विभाग प्रमाण होने पर भी है तो अनंत। इनसे अल्पतर के बंधक जीव असंख्यात गुणे, देखो ना, इसलिए असंख्यात गुणा के लिए ये भी अनंत है, पर अवस्थित से असंख्यात गुणा वाला अनंत है। इनसे भुजगार पद के बंधक जीव विशेष अधिक है। ये अल्प बहुत है, हम अल्प से बहु की ओर जा रहे हैं। भागा भाग में हमने पहले देखा था कि भुजगार आधे से ज्यादा है, अल्पतर आधे से कम है, अवस्थित उनसे असंख्यात विभाग प्रमाण है, और बाकी अवक्तव्य वो अनंत विभाग प्रमाण है बंधकों के। मुझे क्या होता है अंतर्मूर्त बड़ा होता। इसी प्रकार काय योगी औदारिक काय योगी मौनी के कर्म की अपेक्षा लोक कषाय वाले अचक्षु दर्शनी भव्य आहारक जीवन में जानना चाहिए। इनमें आयु कर्म के अवस्थित पद के बंधक जीव सबसे स्तोक है। इनसे अवक्तव्य पद के बंधक जीव असंख्यात गुणे हैं। इन्हें अवस्थित के सबसे स्तोक है। स्तोक होने पर भी कितने हैं याद है? अनंत हो गए, क्योंकि सब तीन चार बांधने वाले अनंत जीव राशि है ना। तो सबसे कम है अवस्थित वाले। इनसे अवक्तव्य पद के बंधक जीव असंख्यात गुणे हैं। अब ये सभी राशि अनंत है, फिर भी उसमें अल्प बहुत तो बता रहे। अवस्थित सबसे कम, अवक्त उनसे असंख्यात गुणे, इनसे अल्पतर पद के बंधक जीव असंख्यात गुणे, और इनसे भुजगार पद के बंधक जीव विशेष अधिक। ये तो ओग से अल्प बहुत तो बता रहे, सात कर्मों का अलग और आयु का अलग। अब नारकियों में सात कर्मों के अवस्थित पद के बंधक जीव सबसे स्तोक है। इनसे अल्पतर पद के बंधक जीव असंख्यात गुणे हैं, और इनसे भुजगार पद के बंधक जीव विशेष अधिक है। नारकियों में साथ में तीन ही पद हो गए। आयु कर्म का भंग ओघ के समान है। अवस्थित सबसे कम हो गए, फिर अवक्तव्य असंख्यात गुणे हो गए, अल्पतर उससे भी असंख्यात गुणे, और भुजगार विशेष अधिक। वहाँ संख्या में वो अनंत में थे, फिर भी जो प्रपोर्शन है वो वही होगा। यहाँ असंख्यातों में इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, सब अपर्या, सामान्य देव, सहस्रार कल्प तक के देव, एकेंद्रिय विकलेंद्रिय पांच स्थावर का एक औदारिक मिश्र का योगी, वैकृत का योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुसक वेदी, क्रोधादि चार कषाय वाले, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, संयता संयत, असंयत, पांच लेशा वाले। देखो यहाँ पांच लेशा वाले के हम पीत पद्म तक ले लिए सब। अभव्य, वेदक समय दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि, समय मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों में जानना चाहिए। शुक्ल को निकाल दिया। शुक्ल में आयु का बंद करने वाले जीव संख्यात होते हैं, हमने पहले देखा था। अभी जो मार्गणा है उसके समान नहीं ली है, उसकी बात अभी यहाँ बताएंगे। मनुष्यों में, अभी मनुष्य कहने से अवक्तव्य भी कहेंगे। सात कर्मों के अवक्तव्य पद के बंधक जीव सबसे स्तोक है। इनसे अवस्थित पद के बंधक जीव असंख्यात गुणे। मनुष्य कहने से वो लब्धियां पर्याप्त भी लेना है, और उनकी मैक्सिमम संख्या असंख्यात होती है, तो उसमें भुजगार, अल्पतर, अवस्थित तीनों ही असंख्यात हो गए। इनसे अल्पतर पद के बंधक जीव असंख्यात गुणे हैं, और इनसे भुजगार पद के बंधक जीव विशेष अधिक है। आयु कर्म का भंग ओग के समान। आयु में क्या देखा था? अवस्थित वाले सबसे कम, अवक्तव्य वाले असंख्यात गुणे हैं, अल्पतर उससे भी असंख्यात बने, और भुजकार विशेष है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय द्विक, यानी ये जहां जहां ये उपशम श्रेणी संभव है ऐसी बातें बताई। त्रसद्विक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, अभिनिर्बोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, चक्षुदर्शनी अवधिदर्शनी शुक्लेशा वाले सम्यक दृष्टि शायिक सम्यक दृष्टि उपशम सम्यक दृष्टि और संगी जीवन में जानना चाहिए तथा इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता कि यहाँ संख्यात कहना चाहिए, जहाँ संख्यात गुणा कहा था वहाँ संख्यात गुणा कहेंगे। तो शुक्ल लेशा लेस और शायिक समय दृष्टि में भी आयु के लिए आयु के बंधे की संख्यात है ना, तो संख्यात गुणा कहेंगे वहां पर। पहले बात आई थी ना शुक्ल लेशा में आयु का बंध करने वाले जो संख्या थे कहीं थे। इसी प्रकार सब देव और संख्यात राशियों में जानना चाहिए। अपगत वेदी जीवों में अवक्तव्य पद के बंधक जीव सबसे स्तोक है। इनसे अवस्थित पद के बंधक जीव संख्यात गुणे हैं। इनसे अल्पतर पद के बंधक जीव संख्यात गुणे हैं और इनसे भुजगार पद के बंधक जीव विशेष अधिक है, क्योंकि अपगत वेदी है ही संख्यात। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्राय संयुक्त जीवन में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। मेरे सूक्ष्म सांप्राय है तो वहां छह का बंद हो ही रहा है, इसमें अवक्तव्य नहीं कह रहे। इसी प्रकार अनाहारक मार्गनातक जानना चाहिए। इस प्रकार भुजगार बंध समाप्त हुआ, ये 13 अनुयोग द्वार उसके समाप्त हो जाते। अब यह नई प्ररूपना चलेगी, पद निक्षेप मैंने उत्कृष्ट जगन में उतना कहेंगे, हानि उत्कृष्ट है हानि जगन में बस इतने कहेंगे। भुजगार में वो भुजगार यानी बढ़कर हुआ बस इतना ही। तो ये जो वृद्धि हुई वो उत्कृष्ट वृद्धि कहाँ होती है, उत्कृष्ट हानि कहाँ होती है, अवस्थान कहाँ होता है उसको कहेंगे। वो जो कहे उसके पश्चात होने वाला। तो पद निक्षेप समुत्कीर्तना, आगे पद निक्षेप का प्रकरण है। एक्चुअली उन्होंने पद निक्षेप का ऐसा अलग पद निक्षेप के प्ररूपण अलग नहीं, उसके समुत्कीर्तना की बात डायरेक्ट चालू की। ऊपर लिखा ना पद निक्षेप समुत्कीर्तना यानी पद निक्षेप में समुत्कीर्तना, उसमें ये 3 अनुयोग द्वार होते हैं, समुत्कीर्तना स्वामित्व और अल्पबोध। यानी पद निक्षेप में जो पहला नंबर है वो है समुत्कीर्तना, बस उत्कृष्ट वृद्धि है हानि है अवस्थान है इतना कहेंगे। समुत्कीर्तना 2 प्रकार की है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश 2 प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से 8 कर्मों की उत्कृष्ट वृद्धि उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है, बस इतना बता दिया। इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तक जानना चाहिए। इतनी विशेषता, इसमें वो अवक्तव्य का कोई सवाल ही नहीं, हानि वृद्धि और अवस्थान 3 ही बताए गए। इतनी विशेषता है वैकृत मिश्र का योगी, आहारक मिश्र का योगी, कारमाण का योगी और अनाहारक जीवों में उत्कृष्ट वृद्धि है, क्योंकि वहां लगातार भुजगार होता है, अवस्थित होने का सवाल नहीं ना अल्पतर, इसलिए ना हानि है ना अवस्थान है, एकांत वृद्धि योग वाले हैं जीव ये सब। इन्हें बाकी में उत्कृष्ट वृद्धि भी है, हानि भी है, अवस्था नहीं। वो कहां किसके होता है वो स्वामी तो मैं बताएंगे। अब जघन्य का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से आठों कर्मों की जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान है। इसी प्रकार अनाहरक मार्गनातक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, वैकिरिक मिश्र का योगी, आहारक मिश्र का योगी, कार्मण का योगी और अनाहरक जीवों में जघन्य वृद्धि है। वही क्योंकि वहां तो बस विकांत वृद्धि वाली वृद्धि है। इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई। अब ये पद निक्षेप नंबर दो, स्वामित्वानुगम दो प्रकार। उन्होंने लिखा नहीं अलग से, क्योंकि मूल प्राकृत में भी उन्होंने अलग से नहीं लिखा। स्वामित्व अनुगम वहीं से उन्होंने बताना चालू किया, परंतु अल्पबोधों के लिए हेडिंग आगे दिया है अलग से, कोई बात नहीं। जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से छह कर्मों की उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी कौन है? क्योंकि सात प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला जो जीव वृद्धि, यानी वो गुजगार में मैक्सिमम वृद्धि चाहिए उसकी, तत्प्रायोग्य जघन्य योग स्थान से। तत्प्रायोग्य शब्द डाला, उत्कृष्ट योग स्थान को प्राप्त होकर छह प्रकार के कर्मों का बंधक हुआ है वो उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी है। क्या कहा इसका अर्थ क्या है अश्विन जी?
हाँ,
कहाँ पर श्रेणी में लेना
पड़ेगा?
अकेले दसवें में
छह प्रकार के कर्मों का बंधक हुआ तो दसवें में होगा,
परंतु पहले नौवे में सात का बंद कर रहा था, तो दसवें में मैक्सिमम प्रदेश बंद होता है ना उसको। नौवे से दसवें में प्रवेश करते हुए उत्कृष्ट योग से किया उसने, ये बात कहना था। नौवे में उसका तत्प्रायोग जघन्य था, उसमें सात कर्मों का बंध हो रहा था, तो छह कर्मों में उसके बंटवारा कम हो रहा
था। में गया,
हाँ वही तो कहे, यह क्या लिखा, छह कर्मों का बंधक हुआ। बंधक हुआ यानी पहले सात का था तभी तो छह का हुआ। क्या वक्त में लेना है, परंतु वह तो बंद ही नहीं था। नौवे से
दसवें,
क्योंकि पहले भी बंद था और बाद में भी बंद है, ऐसा लेना चाहिए ना, वृद्धि हुई है। फिर से पढ़ती हूँ, ओक से छह कर्मों की उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी कौन है? अभी वृद्धि लेने दो, उत्कृष्ट बंध का स्वामी कौन है? तो दसवें गुणस्थान वाला, जहाँ छह कर्मों का बंध हो रहा है। तो इसलिए यहाँ छह कर्मों की उत्कृष्ट वृद्धि की बात पूछी है। तो सात प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला जो जीव आए ना, ये नौवे गुणस्थान, यानी सात कर्मों का बंध कहाँ हो सकता है? तो पहले गुणस्थान से नौवे तक कहीं पर भी, परंतु हमें नेक्स्ट समय में छह कर्मों का बंध करने वाला चाहिए, तो नौवा का अंत समय लेना, चढ़ने वाले नौवे का अंतिम समय में। जो जीव तत्प्रायोग जघन्य योग स्थान से, यानी नौवे गुणस्थान में अंतिम समय में तत्प्रायोग जघन्य योग था, तत्प्रायोग जघन्य योग से सात कर्मों का बंद कर रहा था। तत्रायते एकदम जगन्य योग तो उपपाद में होते हैं, यहाँ नवे गुण जगन्य योग से। अब क्या हुआ, उत्कृष्ट योग स्थान को प्राप्त होकर छह प्रकार के कर्मों का बंधक हुआ, यानी उत्कृष्ट योग के साथ दसवें गुण स्थान का पहला समय। ये कहां पर भी उत्कृष्ट हो सकता है, यानी पहले सात का कर्म का बंध कर रहा था, उसमें से भी छह कर्मों का बंध होने लगा, तो छह कर्मों में यहां अधिक प्रवेश आने लगा। ऐसे भी योग का बढ़ने के कारण भी प्रदेश बंध बढ़ रहा है, परंतु सात से छह में आए इसलिए भी प्रदेश बंध में वृद्धि हो गई। अब उत्कृष्ट हानि का स्वामी कौन है, अब उल्टा लेंगे। जो छह प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला उत्कृष्ट योग वाला जीव मरकर देव हुआ, अब उसको नौवे में नहीं लाया, देव हुआ, क्योंकि देव में जाने से उपपाद योग में आएगा। नौवे से जो दसवें में आया है वो गोलमान योग में ही था और गोलमान योग में ही आया, तो उसकी अभी इसमें वृद्धि ज्यादा होगी लक्ष्मी की, हानि ज्यादा होगी, हानि होगी, क्योंकि अभी वो देव में गया तो उपपाद योग में आया है। तो देखो, छह प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला उत्कृष्ट योग वाला जीव मरकर होगा, देव होगा, यानी वो दसवें गुण स्थान वाला उत्कृष्ट योग वाला जीव है। दसवें गुणस्थान का कोई भी सभ्य हो सकता है, उसका ऐसा कुछ भी हो सकता है, चढ़ने वाला भी या उतरने वाला भी। केवल उसके कंडीशन क्या है, उत्कृष्ट योग में था। उपाध हुआ ना उसका, उपाध योग। ऐसे भी उपाध योग जगन्य होता है। फिर से देखो, जो छह प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला उत्कृष्ट योग वाला जीव मरकर देव हुआ, अनंतर तत्प्राज्ञ जगन्य योग स्थान में गिरा, वह उत्कृष्ट हानि का स्वामी है, यानी उपाध योग हुआ उसका, वहां से गिरा। उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी कौन है, जो छह प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला उत्कृष्ट योग से युक्त जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्राज्ञ जगन्य योग स्थान में गिरा। नहीं, देव में जाएंगे कैसे घटित करेंगे, अरे उपपाद के बाद तो एकांत वृद्धि होगी, वहां तो वृद्धि होगी, हमें अवस्थान चाहिए, इसलिए वो मरकर जाने वाले की बात नहीं हो सकती, दसवें में ही रखना है उसको। दसवें में उत्कृष्ट योग से तत्प्राज्ञ जगन्य होगा और दूसरे समय में उतना का उतना रहेगा, तब उसका अवस्थान कहलाएगा। देखो क्या फिर पढ़ेंगे, जो छह प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला उत्कृष्ट योग से युक्त जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्राज्ञ जगन्य योग स्थान में गिरा, तत्प्राज्ञ शब्द डाला, अनंतर सात प्रकार के कर्मों का बंध करने लगा, वो उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी है। ये नेचुरल है ना, ये बराबर
छह कर्मों का बंध करने
लगा, हाँ नवे में सात कर्मों का बंध करने लगा, अंतिम समय में उत्कृष्ट योग
नवे के पहले समय
नवे, हाँ इन्हें दसवें में से नवे में आया, नवे का दूसरा समय, नवे में आया तो हानि हुई और हानि के बाद उतना का उतना हुआ, तो नवे गुणस्थान का दूसरा समय, दसवें से नौवे में आया तो हानि। दसवें में उत्कृष्ट था, नौवें में तत्प्रायोग्य जघन्य, और नौवें के दूसरे समय में अवस्था। पानी चाहिए ना। दसवें में उत्कृष्ट था तो उत्कृष्ट बंद कर रहा है, अब नौवें में आए तो सात कर्म बंद नहीं लगे, वैसे भी प्रदेश बंद में हानि हो जाएगी। देखो ये क्या कहने थे, उत्कृष्ट योग स्थान से प्रतिभग्न होकर जिस तत्प्रायोग्य जगन्य योग स्थान में गिरा, उससे वह योग स्थान स्तोकतर है, यानी छोटा है, कम है। हो गया ना,
वो हो गया,
यानी दसवें में था, दसवें के अंतिम समय में उत्कृष्ट योग में था, उसमें से वो नौवे में आया, नौवे में आया तो तत्प्रायोगी वाला जघन्य था, उतना बंद करके सेकंड समय में उतना का उतना रहा। आप कहेंगे अवस्थान के लिए वो नौवे के बाद दसवें में चढ़ाओ ना, और वहां उतना का उतना कराओ, उत्कृष्ट दो समय तक हो सकता है, तो वहां क्यों नहीं लिया, ये भी प्रश्न हो सकता है ना। नहीं समझे, उत्कृष्ट वृद्धि के बाद अवस्थान तो उत्कृष्ट वृद्धि के बाद भी हो सकता है, जगन्य वृद्धि उत्कृष्ट हानि के बाद भी हो सकता है, परंतु यहाँ उसको नहीं लिया। तो कहते उससे वह योग स्थान स्तोकतर है, तत्प्राय के जगन्य योग स्थान से उत्कृष्ट योग स्थान को जाता है, वह योग स्थान असंख्यात गुना है। यह उत्कृष्ट अवस्थान का साधन पद है। यानी जिस स्थान में गिरा है तो भी कैसे समझेंगे, मान लेते हैं ना, अभी हम ये पट्टी पर देखेंगे, नवे के अंत में जो योग स्थान था मान लेते उसकी हम संख्या पांच समझते, और वो उत्कृष्ट योग तक पहुंचा, यानी दस तक पहुंचा मान लेते हैं ना, असंख्यात गुणा है फिर भी दस तक पहुंचा। अब उतरते समय वही उत्कृष्ट जो दस है वहां से प्रतिभग्न होकर जो नीचे आया है वो कहते स्तोक तरह है, तत्प्रायोग जगन योग स्थान से उत्कृष्ट योग स्थान को जाता है, वह उत्कृष्ट योग उत्कृष्ट अवस्थान का साधन पद है। यानी इसलिए उत्कृष्ट जो अवस्थान बताया है वो हानि के बाद बताया है, वृद्धि के बाद नहीं बताया। जब ऊपर मैं प्राकृत में आपको अधिक समझा सकूंगा, यानी अपने हमने चढ़ते समय क्या देखा था, पांच से दस तक पहुंचा है, वो दस वाले से अभी गिरते समय पांच में नहीं चार तक गिरेगा, यही बात कहना चाहते हैं, तभी तो अवस्थित कहेंगे उसको, नहीं तो अवस्थित चढ़ने के बाद भी बताते हैं। अरविंद भाई आप क्या कहते हैं, उससे वह योग स्थान स्तोकतर है, जगन योग स्थान में गिरा, ये उत्कृष्ट अवस्थान का साधन पद है। अब हम मुनि में देखेंगे, मुनि की उत्कृष्ट बुद्धि का स्वामी कौन है, जो आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला जीव अब मौनी का पहले हमने वृद्धि की बात छोड़ो, मौनी का उत्कृष्ट प्रदेश बंद कहाँ होता है, कौन से गुणस्थान में? एक से नौ पर भी संगी पंचेंद्रिय चाहिए हमको बस, और उत्कृष्ट योग वाला चाहिए, ये कंडीशन है। जब आठ कर्मों का बंद कर रहा है तो मोहनी के खाते में कम मिलेगा, जब वो सात का करने लगेगा तो बंद बढ़ेगा। केवल सात का नहीं कराना, उत्कृष्ट योग के साथ सात मिलाना। मैंने जघन्य योग के साथ आठ कर्मों का बंद कर रहा था, वो कहेंगे हम उसके, क्योंकि तत्प्रागी शब्द लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आयु का बंद तो एकदम जघन्य में तो होता ही नहीं है। ये प्रेरणा यहाँ नहीं लेना है, जघन्य में जो उपपाद को जघन्य कहते वो यहाँ नहीं लेना, क्योंकि यहाँ उन्होंने उपपाद एकांत वृद्धि ये ऐसी बातें बताई नहीं है। समझने के लिए हमने उनको नाम दिए, कि जो नाम योग स्थानों की प्रवृत्ति में आते हैं, जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में हमने पढ़े थे। तो मोनी की उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी कौन है? जो आठ प्रकार के कर्मों का बंद करने वाला जीव तत्प्रायोग जगन्य योग स्थान से उत्कृष्ट योग स्थान को प्राप्त होकर सात प्रकार के कर्मों का बंद करने लगा, वह उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी है। हाँ, आठ से कर्म, आठ का कर रहा था तो तत्प्रायोग जगन्य योग था, सात का करना था तो उत्कृष्ट योग में। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पहले बता चुके हैं, उत्कृष्ट योग वाला किसको होगा, ये क्या है, उसका स्वामी कौन है, इसकी चर्चा अपनी हो गई पहले। अब उत्कृष्ट हानि का स्वामी कौन है? जो सात प्रकार के कर्मों का बंद करने वाला उत्कृष्ट योग से युक्त जीव मरकर तथा सूक्ष्म निरोध अपर्याप्त जीवों में उत्पन्न होकर, क्योंकि सबसे जघन्य उपपाद योग उसी के होता है, तत्प्रायोग जघन्य योग स्थान में गिरा, वह उत्कृष्ट हानि का स्वामी है। उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी कौन है? अभी जो गिरा है उपपाद में, वहां तो अवस्थान नहीं हो सकता, क्योंकि सात प्रकार के कर्मों का बंद करता हुआ जो उत्कृष्ट योग स्थान योग वाला जीव प्रतिभग्न होकर तथा तत्प्रायोग जगन योग स्थान में गिरकर आठ प्रकार के कर्मों का बंद करने वाला हो गया, वह उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी, वह है नहीं उसके दूसरे समय में हो, क्योंकि वो तो वहां हानि होगी और दूसरे समय में अवस्थान होगा, यानी द्वितीय समय में वो। यहाँ ऊपर जो लिखा है ना, देखो 81 पेज पे पहली लाइन, जो सत्तविद बंधवो उपकस जोगी परिभगो, उसका क्या उन्होंने ट्रांसलेशन किया, सात प्रकार के कर्मों का बंद करता हुआ जो उत्कृष्ट योग वाला जीव प्रतिभग्न होकर तब पावक जघन्य योग ठाणे पड़ी दो तत्प्रायोग जघन्य योग स्थान में गिर कर अठविध बंधको जादो, आठ प्रकार के कर्मों का बंद करने वाला हो गया, तस्स उपकस्स अवठाणो, वो द्वितीय समय में चाहिए वहां पर। द्वितीय समय उतना ही करेगा तो ही की बात है ना, परंतु ये समझ लेना, लिखा नहीं तो भी उसमें है वो। ये मोनी के बारे में ख्याल आया
कभी? यहाँ पे भूमिया में अवस्थान में उत्कृष्ट अवस्थान में एक ही मिनट हो गया, बाकी सभी जगह
क्या क्या अवस्थान में नहीं लिया, उत्कृष्ट हानि में लिया,
और बाकी सभी पक्षी
कहाँ बाकी है?
बाकी सभी उत्कृष्ट बुद्धि उत्कृष्ट हानि में सभी करते हैं।
उत्कृष्ट वृद्धि में तो है ही है ना, क्योंकि आठ कर्मों का बंद कर रहा था वो सात का करने लगा, हाँ। और फिर वो उत्कृष्ट योग के साथ करने लगा, हाँ। तो नेचुरल है वहाँ पर, यानी उसको उसी पर्याय में रखना है और हानि में उपपाद में ले जाना, हाँ। अवस्थान के लिए दोनों चले। हानि में उसको पंचेंद्रिय से वो एक इंद्रिय में भेजना है, हाँ, मोहनी के लिए। क्योंकि सात वाला छह का कर्म बंद करने वाला वो तो एक इंद्रिय में जा नहीं सकता है, देव में जाता है, उसको देव में लिया, क्योंकि दसवें से जाने वाला देव में जाएगा। और यहाँ मिथ्या दृष्टि मरकर सूक्ष्म निगोद हुआ, पंचेंद्रिय भी उसके उत्कृष्ट योग था, वहां निगोद का जो उपपाद जगन योग है उसको ले लिया। वहां आयु कर्म की उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी कौन है? जो आठ प्रकार के कर्मों का बंद करने वाला जीव तत्प्राय के जगन योग स्थान से उत्कृष्ट योग स्थान को प्राप्त हुआ वो उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी है। ये सात से आठ में नहीं ला सकते, क्योंकि आयु का बंध ऑलरेडी होना चाहिए और वो उत्कृष्ट वृद्धि हो रही है, क्योंकि वो अवक्तव्य वाला पहला समय नहीं ले सकते, क्योंकि पहले बंध ही नहीं था तो वृद्धि कैसे कहेंगे हम? वृद्धि ने पहले भी बनता था, अब भी बन रहा है, तो पहले जो तत्प्राय के जगन योग स्थान में था अब उत्कृष्ट योग स्थान को प्राप्त हुआ, वह उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी है। उत्कृष्ट हानि का स्वामी कौन है? जो उत्कृष्ट योग वाला जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्राय के जगन योग स्थान में गिरा वह उत्कृष्ट हानि का स्वामी है, और उसी के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। ये बताया ना यहाँ पर, प्रश्न का सवाल ही नहीं, हानि के अनंतर है। इस प्रकार ओग के समान काय योगी लोभ कषायी, क्योंकि मोहनी को भी अलग से बताना था ना, परंतु मोहनी को सात से आठ में इतना ही लिया था, लोभ कषाय में वो बाकी छह कर्मों के बाद घटित होती इसलिए उसको लिया। ओग के समान जो घटित करना था ना छह कर्मों की बात लोभ कषाय वाले में होगी। तो ओग के समान काय योगी लोभ कषायी अचक्षु दर्शनी भव्य और अनारक जीवन में जानना चाहिए। ये ख्याल में आई बात हो कि उदारिक वायु को छोड़ा आएगी बात आगे। देखो हमने क्या क्या देखा, फिर से देखेंगे। यहाँ पद निक्षेप में क्या है बात है, उत्कृष्ट वृद्धि उत्कृष्ट हानि और अवस्था। तो पहले छह कर्मों की बात देखें, पहले समुत्कीर्तना तो वो तो है इतना ही बताएंगे, किसके होती है वो बात यहाँ स्वामित्व में बता दी। तो छह कर्मों के उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? नौवे गुण स्थान वाला सात कर्मों का बंद कर रहा था तत्प्राय के जगन्य में था, वो दसवें में उत्कृष्ट योग वाला हो गया, तो ऐसे भी सात में से छह में आया तो उसकी वृद्धि हुई थी, मतलब योग में भी वृद्धि होने के कारण उत्कृष्ट प्रदेश बंद करने लगा। हानि में कौन सा लेना, वो छह का बंद कर रहा था उत्कृष्ट योग में था, मरकर देव हुआ। नवे में आता तो उसका वही गोलमान योग होता, देव में गए तो उपाधि योग में चला गया, वो तो बहुत कम होता है, इसलिए वहां उत्कृष्ट हानि हो गई। परंतु उस उत्कृष्ट हानि के बाद अवस्थान नहीं कह सकते, क्योंकि वहां एकांत वृद्धि होगी, इसलिए अवस्थान के लिए क्या लेना है, सात कर्मों का ही जो दसवें में से नौवे में आया, दसवें का उत्कृष्ट नौवे में तत्प्रायज्ञ में आया जघन्य में, और सेकंड समय में उतना ही बनकर उसको ले, वो उत्कृष्ट अवस्थान ले। ये छह कर्मों के बारे में। मोनी के लिए क्या लेना, आठ कर्मों का बंद कर रहा था आयु सहित, और वो सात का करने लगा, वहां तक प्रायज्ञ जघन्य से उत्कृष्ट में आ गया, वो हो गई वृद्धि। हानि में कौन सा लेना, उत्कृष्ट योग वाला है, अब यह मिथ्या दृष्टि लेना, और वो मरकर सूक्ष्म निगोद में उपपाद योग में चला गया, तो उसकी उत्कृष्ट हानि हो गई। अब वहां वो उत्कृष्ट हानि के बाद तो उपपाद के बाद तो अवस्था नहीं हो सकता, इसलिए फिर से पहले की बात लेनी है, यानी सात कर्मों का बंद कर रहा था, उत्कृष्ट योग में था, और योग भी कम हुआ, और आठ का बंद करने लगा, तो वहां तो हानि हुई, और द्वितीय समय में उतना का उतना किया तो अवस्था नहीं। आयु कर्मों में अभी यहां तो सात या आठ की बात छोड़ो, आठ ही कर्मों का बंद होगा, तो तत्प्रायज्ञ जघन्य से तत्प्रायज्ञ उत्कृष्ट हुआ तो वृद्धि हुई, और उत्कृष्ट हानि उत्कृष्ट योग वाला जो प्रतिभग्न होकर तत्प्रायज्ञ जघन्य योग स्थान में गिरा, वह उत्कृष्ट हानि हो गई, और उसके अनंत समय में अवस्था, यानी हानि के पश्चात अवस्थान को लिया। अब नारकियों में देखेंगे, मार्गनाओं में सात कर्मों की उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी कौन है, अब यहां छह से सात ऐसा कुछ लेना नहीं है, तो आठ प्रकार के कर्मों का बंद करने वाला जो जीव, अब यहाँ सात और आठ दो ही पॉसिबिलिटीज है, तो आठ प्रकार के कर्मों का बंद करने वाला जो जीव तत्प्रायोगिक जगन योग स्थान से, तत्प्रायोगिक इसीलिए लिया क्योंकि गोलमान वाला जो है तत्प्रायोगिक कहेंगे उसको, उत्कृष्ट योग स्थान को प्राप्त होकर सात प्रकार के कर्मों का बंद करने लगा, वो उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी है। तो वहां जन्म लेते ही होगा कि नहीं होगा, ये कब होगा, कब
करेगा,
अरे लास्ट छह महीने में करेगा। नहीं नहीं, आयु का बंद का आठ प्रकार का कर्म का बंद कब करेगा, तो अंतिम छह महीने में ही करेगा ना, तो आठ से वो सात करने लगा उत्कृष्ट योग के साथ, तो वृद्धि हुई। उत्कृष्ट हानि का स्वामी कौन है, जो सात प्रकार के कर्मों का बंद करता हुआ उत्कृष्ट योग वाला जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायज्ञ जघन्य योग स्थान में गिर कर आठ प्रकार के कर्मों का बंद करने लगा, वह उत्कृष्ट हानि का स्वामी है, तथा उसी के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। यानी यहाँ ये बात शायद कहना चाहते जो
हाँ
वही करो, यानी जिस स्थान से वो उत्कृष्ट योग को पहुंचता है वो स्थान ऊपर है, वो आयु की बात नहीं कहना चाहते, जिस तत्प्रायज्ञ से बढ़कर उत्कृष्ट तक होता है उस स्थान से प्रतिभग्न होकर जिस स्थान में गिरता है वो कम है, तभी तो हानि ज्यादा बताई ना, वो तो उसमें अल्पबहुत वो लगाएंगे, उत्कृष्ट ज्यादा है कि जघन्य ज्यादा है, उत्कृष्ट ज्यादा है वृद्धि के हानि ज्यादा है उसमें बताएंगे। आयु कर्म का भंग ओह के समान है, आयु में हमने क्या देखा था, वो तो आठ ही कर्मों का बंद करते हुए उसमें तत्प्रायज्ञ जघन्य उत्कृष्ट लगाना, सात या आठ ऐसा नहीं करना, आठ ही का बंद कर रहा था, जघन्य योग से उत्कृष्ट योग में पहुंचा तो वृद्धि हुई, और उत्कृष्ट योग वाला प्रतिभन होकर जघन्य करने लगा तो हानि हुई। दूसरे समय में अवस्था। इसी प्रकार सब नारकी सब देव वैकृत का योगी आहार का योगी विभंग ज्ञानी परिहार विशुद्धि संयत संयता संयत सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों में जानना चाहिए। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों में आठ का भंग हो तो वो बात नहीं घटित होगी। आठ का बंधे नहीं है, वो तो सात का ही करते हुए सात का करते हुए वो जगत ने इसे उत्कृष्ट योग स्थान में पहुंचाना है उसको, बस और कुछ नहीं। तीरियंचों में तो समय मिथ्या दृष्टि क्यों डाला वहां पर? डालना ही नहीं, वो आठ से सात वाली बात उसमें घटित नहीं होगी। बस यहाँ ऊपर भी सम्मा मिथ्या दृष्टि लिखा है उन्होंने। ये सम्यक मिथ्या दृष्टि बात कुछ समझ में नहीं आई क्यों डाला वहां नारकियों के समान। देखो नारकियों में हमने क्या देखा, नीचे से दूसरे पैराग्राफ, सात कर्मों की उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी कौन है कि पहले आठ कर्मों का बंद कर रहा था, वहां जगन योग था, फिर सात कर्मों का बंद करने लगा और एकदम उत्कृष्ट योग के साथ करने लगा तो वृद्धि हुई। हानि में सात का उत्कृष्ट योग के साथ होकर रहा था, वो प्रतिभग्न होकर जगन्य स्थान में गिरकर आठ का बंद करने लगा, वो हानि होगी। और आयु कर्म का भंग ओग के समान है, जो हमने योग में ओग में देखा था वहां आठ ही कर्मों का बंद कर रहा था ऐसा लेना है। तो ऐसी ही बात उन्होंने सब नारकी सब देव वैकृत कायुगी आहार कायुगी वगैरह वगैरह में सब में ले लिया। तो वहां सम्यक मिथ्या दृष्टि क्यों लिखा, ये अपना प्रश्न था। सम्मादिट्ठी कह सकते हम, हाँ, परंतु वही घटित नहीं हो रहा ना, क्योंकि वहां आठ और सात का सवाल ही नहीं है, सात ही कर्मों का बंद हो रहा है, आयु कर्म बनता ही नहीं वहां पर। हाँ वो श्रेणी वाली बात वहाँ नहीं लेना, जहाँ श्रेणी वो समय दृष्टि वहाँ नहीं घटित हो गई, संसाधन वाला हो सकता है।
संसाधन में भी घटित होगी क्योंकि हानि तो उत्पन्न होगा
शासन में क्या। नारकियों की बात जैसी है ना, मैंने जिस मार्गना में रहते हुए वो अन्यत्र नहीं चला जाएगा, इसी मार्गना लेनी चाहिए। देखो ये कैसी ली है, इसमें मरकर वो अन्यत्र जाता है तो ये मार्गना कंटिन्यूस नहीं रहती। जैसे विभव विज्ञान उसी पर्याय में है, पर्याय विशुद्धि उसी पर्याय में है।
शासन में तो
शासन के साथ जा सकता है,
शासन में तो मनुष्य तो
क्वेश्चन मार्क लगाओ उसे। आगे देखें तीरियंचों में देखेंगे अभी हम। सात कर्मों की उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी कौन है, जो आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला जीव तत्प्राय के जगन योग स्थान से उत्कृष्ट योग स्थान को प्राप्त होकर सात प्रकार के कर्मों का बंध करने लगा, वह उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी है। उत्कृष्ट हानि का स्वामी कौन है, जो सात प्रकार के कर्मों का बंध करता हुआ उत्कृष्ट योग वाला जीव मरा और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव में उत्पन्न हुआ, वो उत्कृष्ट हानि का स्वामी है। यहाँ उपाधि योग में आ गए ना डायरेक्ट उत्कृष्ट योग से। उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी कौन है, जो सात प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला उत्कृष्ट योग वाला जीव प्रतिभग्न होकर और तत्प्राय जगन योग स्थान में गिर कर आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने लगा, वो उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी है। क्योंकि वहां अन्य पर्याय में नहीं भेज सकते, वहां उपपाद के बाद उसको अवस्थान नहीं होगा। इसलिए
यहाँ पे इस आठ कर्मों का बंध कर रहा था और सात कर्मों का बंध करने लगा तो वहां पे अवस्था नहीं होगी
क्या? क्या
आठ प्रकार का बंध कर रहा था कर्मों का और सात का बंध करने लगा
तो वहाँ वृद्धि होगी कि हानि होगी?
हानि।
कैसे होगी? हानि में उल्टा ले ही लिया, सात में से आठ में लाया उसको।
अच्छा,
और दूसरे समय में
अवस्था लिया।
हाँ, अवस्था लिया। आयु कर्म का भंग हो के समय ने आठ का ही बंद कर रहा था, उत्कृष्ट योग से तत्प्राय के जगन्य में आ गया। इसलिए वो के समान कह दिया। इस प्रकार सामान्य तीरियंचों के समान नपुसक वेदी क्रोधादि तीन कषाय वाले, यानी जिसमें वो पंचेंद्रिय भी है और एकेंद्रिय भी है, क्योंकि मरकर जाने की अपेक्षा लिए ना, निगोद में जाने की अपेक्षा। मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी असंयत तीन लेशा वाले अभव्य मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवन में जानना चाहिए। अशुभ लेश तीन अशुभ। हाँ, लोक कषाय में तो हमने वो मोहनी की बात घटित की थी ना। पंचेन्द्रिय तीर्यंच त्रिक में सात कर्मों की वृद्धि और अवस्थान का स्वामी सामान्य तीरियंचों के समान है। उत्कृष्ट, क्योंकि पंचेन्द्रिय तीरियंच में ही रहा हुआ। उत्कृष्ट हानि का स्वामी कौन है, सात प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला उत्कृष्ट योग से युक्त जो अन्यतर जीव प्रतिभग्न होकर और तत्प्राय जगन योग स्थान में गिरकर आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने लगा, वो उत्कृष्ट हानि का स्वामी है।
तो
यहाँ वो नहीं लिया कि असंगी में जन्मा उपोपाद में तो पंचनी है ना, असंगी पंचनी को ही लेना है। पंचनी तीरियंश कहने से संगी असंगी पर्याप्त अपर्याप्त सभी आ गए। अभी वो तो आगे वाला है, वो इतनी विशेषता वगैरह कुछ नहीं लिखी है, पता नहीं है। अल्प बहुतों की शुरुआत का पार्ट निकल गया कितना ही। हाँ उत्कृष्टानी का स्वामी है, फिर वो अवस्थान वगैरह कुछ नहीं लिया है। अल्प वो तो पढ़ेंगे अभी, अभी पहले का तो पाठ निकल गया है। संभव होने से औदारिक मिश्र का योगियों में सात कर्मों का भंग ओग के समान है, इतनी विशेषता है। असंख्यात गुणहानि के ऊपर असंख्यात गुण वृद्धि असंख्यात गुणी है। ये इसका अल्प बहुत वो नहीं है। ये इसका नहीं अल्प बहुत, ये वृद्धि का है। देखो ये तो हम पदनिक्षेप देख रहे थे ना, पदनिक्षेप में जो वृद्धि हुई है वो छह प्रकार की वृद्धि, अभी वो योग में है तो चार प्रकार की वृद्धि आनी तो संभव है, उसमें ये अल्प बहुत बहुत बीच में चला गया है। यानी पदनिक्षेप से लेकर वृद्धि की प्ररूपना बहुत सारी चली गई। देखो देखो अल्प बहुतों का आगे वाला इस प्रकार अल्प बहुत्व समाप्त हुआ लिखा है ना, ऊपर देखो 83 पेज पर प्राकृत में सेकंड लाइन, एवं वड्डी बंधो समत्त, वृद्धि बंध यहाँ समाप्त हुआ। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, वो कौन से प्रकार की, संख्यात भाग है असंख्यात भाग है संख्यात गुणा है असंख्यात, वो अलग प्रकरण था। यानी यहाँ जो हाँ ये जो पदनिक्षेप वाली बात है, पदनिक्षेप वाली वहां से वो डॉट 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 लिखा है, ये अल्प बहुत है, ये वृद्धि प्ररूपना का अल्प बहुत है। वृद्धि प्ररूपना उसको क्या कहेंगे हम, उत्तर प्रकृति में उसको क्या कहा है देखेंगे जरा। पद निक्षेप न देखो 19 पेज, विषय परिचय का 19। पदनिक्षेप में तो उत्कृष्ट वृद्धि हानि का समत कीर्तना स्वामी तो अल्प बहुत हो जाता है। यहाँ ये नया पैराग्राफ है 19 पेज पर ऊपर से चौथी लाइन, यहाँ एक ताड़ पत्र के गल जाने से मूल प्रकृतियों की अपेक्षा स्वामित्व के अंत का बहुभाग, स्वामित्व ने पदनिक्षेप के स्वामित्व और अल्प बहुत्व तथा वृद्धि अनुद्वार के अल्पभूतों के अंत के अंश को छोड़कर शेष सब प्रकरण नष्ट हो गए। यानी वृद्धि में से केवल अल्पभूतों का अंत का अंश रह गया, बाकी शुरुआत के सभी नष्ट हो गए। इसी प्रकार के उत्तर प्रकृति उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व का निर्देश करते हुए अभिनवोदिक वगैरह 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 वहां से क्रमागत ताड़पत्र की यहाँ पर अनुपलब्धि है, अक्रमयुक्त अन्य ताड़पत्र उपलब्ध हो रहा है। यानी उसमें कौन सी वृद्धि हानि होती है वो यहाँ बताएंगे, वो तो चला गया सब। छोटे छोटे हो गए ना, जैसे यहाँ ज्यादा नहीं है ना, भावान जैसे देखो ना, अब पद निक्षेप शुरू हुआ था 79 पेज से, अब यहाँ हम 82 पेज पर आ गए। वैसे तो यहाँ स्वामित्व समाप्त होने को आया और उसका अल्पबोध रहा था, यानी हानि ज्यादा है कि वृद्धि जाने ज्यादा है वगैरह वगैरह बात रह गई थी। हम कह सकते हैं ना, ओ में तो हानि ज्यादा होती है मोहनी की वगैरह, कहीं पर भी हानि के साथ लिया था उसको। अभी जो अल्पबोध लिखा है वो वृद्धि प्ररूपणा का अल्पबोध, इतनी बात समझ रहे हैं। हाँ, वो सब नीचे पहले से चले गए। अभी वे अल्पभूतों की तीसरी लाइन पढ़ेंगे। अपगत वेदी जीवों में सात कर्मों के अवस्थित पद वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवक्त हुए पद वाले जीव संख्यात गुणे हैं। इनसे असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि वाले जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यात बने हैं। इनसे संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग हानि वाले जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यात गुणे हैं। इनसे संख्यात गुण वृद्धि और संख्यात गुण हानि वाले जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यात गुणे हैं। और इनसे असंख्यात गुण हानि वाले जीव संख्यात गुणे, इनसे असंख्यात गुण वृद्धि वाले जीव विशेष अधिक। इस प्रकार इस बीच पद के अनुसार अनाहरक मार्गणात अल्पभूतव ले जाना चाहिए। इस प्रकार अल्पभूतव समाप्त हुआ। ये अल्पभूतव वाला वृद्धि बंद का ऊपर जो लिखा है उसका उन्होंने अनुवाद नहीं किया, एवं वड्डी बंधो समत्तो, यानी इसका एक वाक्य चाहिए था। इस प्रकार वृद्धि बंध समाप्त हुआ। अध्यवसान समुदाहार प्रमाणानुगम, अध्यवसान हमने देखे ना, वो बंध के कारणभूत परिणाम को कहा था यहाँ पर। अध्यवसान समुदाहार का प्रकरण है, उसमें ये दो अन्वयकदार होते हैं, प्रमाणानुगम और अल्पभूत। प्रमाणानुगम की अपेक्षा ज्ञानावरणीय कर्म के असंख्यात प्रदेश बंध स्थान है, जो योग स्थानों से संख्यात वे भाग प्रमाण अधिक है।
योग स्थान से स्थान अधिक
यानी इससे एक ही पर्टिकुलर योग स्थान में अधिक प्रदेश भी बन सकते हैं, ये बात सिद्ध होती है ना। प्रदेश बंध के स्थान असंख्यात है, जो योग स्थानों से
योग स्थान में योग भी प्रदेश बंध होता है, तो योग स्थान से प्रदेश बंध का
प्रस्तावना निकालो विषय परिचय में। कहाँ पर मिला? 19 पेज नीचे, वही अध्यवसान समुदाहार जो लिख रहे, अध्यवसान समुदाहार के दो वेद में, वहीं से पढ़ रही हूँ। प्रमाणानुगम और अल्पबोध। प्रमाणानुगम में योग स्थान और प्रदेश बंध स्थानों के प्रमाण का निर्देश करते हुए बताया है, जितने योग स्थान है उनसे ज्ञानावरण कर्म के प्रदेश बंध स्थान संख्यात वे भाग प्रमाण अधिक है। कारण का निर्देश करते हुए बताया है, 8 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले जीव को सब योग स्थान प्राप्त होते हैं। अच्छा, 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले जीव के जो उत्कृष्ट होता है उसमें से 8 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले जीव का उत्कृष्ट योग स्थान का कुछ भाग शेष बचता है, इसलिए 8 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले से 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले के विशेष प्राप्त होता है। अपनी भाषा भी समझेंगे, जब 8 कर्मों का बंध होता तो भी सभी योग स्थान है, परंतु उनमें प्रदेश बंध अलग अलग है, उतने ही योग स्थान 7 कर्मों का भी बंध कर रहे, वहां वो प्रदेश बंध का प्रमाण अलग होगा। जो 6 कर्मों का बंध कर रहे वहां पर भी वही सब योग स्थान है, वहां उनका प्रदेश बंध का प्रमाण भी अलग होगा, इसलिए प्रदेश बंध के स्थान ज्यादा होते हैं। देखो 8 प्रकार के, यहाँ लिखा है 83 पेज पर, 8 प्रकार के कर्मों के बंधक जीव ने सब योग स्थान प्राप्त किए हैं, उससे 7 प्रकार के बंधक के उत्कृष्ट से 8 प्रकार के बंधक का उत्कृष्ट शुद्ध है। तथा इस शुद्ध से शेष जितना भाग योग स्थान को प्राप्त हुआ है उससे 7 प्रकार के कर्मों के बंधक ने विशेष प्राप्त किया है। अधिक होगा, इसी प्रकार 7 प्रकार के बंधक का 6 प्रकार के कर्मों के बंधक ने प्राप्त किया है। इस कारण से ज्ञानावरण कर्म के असंख्यात प्रदेश बंध स्थान है, जो योग स्थानों से संख्यात है वह प्रमाण अधिक है। इसी प्रकार 7 कर्मों के विषय में जानना चाहिए, यानी जैसे ज्ञानी अन्य पर घटित कर दिया वैसे भी अन्य 7 कर्मों पर घटित होगा।
टोटल नंबर ऑफ योग स्थान है उससे ज्ञानावरण के बंध स्थान अधिक है, वो
वही तो बताया। योग स्थान उतने के उतने मान लेते 10 योग स्थान, तो 10 प्रदेश बंध स्थान होने चाहिए थे हमारी कल्पना के अनुसार, है ना? ऐसा लगता है। तो 8 का ही बंध होता रहे कायम, तो 8 कर्मों का बंध है और उसके लिए 10 योग स्थान है, तो 10 प्रकार के प्रदेश बंध के स्थान हो गए। परंतु जब 8 कर्मों का बंध हो रहा है तो उसमें प्रदेश बंध 8वां भाग प्रमाण हो गए, उतने ही सारे 10 योग स्थानों में। यानी देखो हम ऐसा देखते हैं कि 8 हमने 10 योग स्थान देखे ना, तो 8 कर्मों का बंध हो रहा है तो आठ कर्मों का बंध होते हुए प्रदेश बंध स्थान कितने हो गए? दस हो गए। ये मंजूर है ना? अब उतने ही दस योग स्थान सात कर्मों का भी बंध करते हैं। तो जब वो सात में डिवाइड, पहले तो आठ में डिवाइड हो रहे थे, मान लेते हजार परमाणु बंध रहे थे, पहले हजार बंध रहे थे, या आठ हजार ले लो ना, जब आठ कर्म बंध रहे थे योग की अपेक्षा दस प्रदेश बंध स्थान, परंतु एक हर एक में प्रदेश बंध कितना होगा? हजार हजार परमाणु का, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे समझने के लिए। तो हर एक कर्म में आठवां भाग मिलता था, यानी हजार हजार परमाणु मिलते, हजार हजार वाले दस स्थान अलग अलग, हजार हजार वाले दस स्थान ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि हजार वाला एक स्थान है, फिर दूसरे भी होंगे ना, अधिक उत्कृष्ट योग से अधिक भी परमाणु बंधेंगे। हम एक मिनिमम स्थान में हजार देखते समझाने के लिए। अब जब सात कर्म बंध रहे, तो जो हमने दस हजार का हजार वाक्य किया ना, दस में डिवाइड किया था, क्या हजार का दसवा वाक्य आठ हजार लिया था? अच्छा, आठ हजार लिया था, आठ हजार का हमने एक हजार लिया। अब जब सात कर्म बंध रहे तो आठ हजार का सातवा भाग करो, कितना हुआ? ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो वो प्रदेश बंध अलग गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? योग स्थान दस के दस रहे, जब आठ में डिवाइड हो रहे तो वो आठ स्थान, यानी इसके भी इसके दस स्थान थे और उसके भी दस स्थान हो गए, यानी आठ की अपेक्षा वो दस हो गए। जब सात कर्मों का बंद हो रहा है तो योग स्थान दस के दस है, प्रदेश बंध के स्थान ज्यादा और एक्स्ट्रा एडिशनल अलग हो गए। हाँ, अभी हम यही रुकते हैं। इसी प्रकार सात कर्मों के विषय में जानना चाहिए, वो कल इसकी चर्चा करेंगे। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देते।